एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी मिले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते जानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार मल्ला पहला नानक गुरु न चेतन मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोनाए फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआओ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए करयासन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सबसे दिले से जिंद को आओ करयासन डिठो चाओ करयासन डिठो चाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अदुत्ती रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी दी पावन बाणी जिसका नाम आसा दिवार है। सियाणियां दा ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत दे ग्रंथां विच आसा ते माज राग मिलदा नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज दी देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्मी रचना उचारण कीती है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उचारण कीती जांदी है, और ये कुछ स्वभाविक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द दे अर्थ इत्थे भी जंगी ने, जंगी तरस दे नाल उचारण कीती हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी ए रहा है। इस दे च गाहे बगाहे जो जोधे पैदा हुंदे रहे सूरमे पैदा हुंदे रहे ढाडी लोक जो वास्तविक किसे हद तक छंदाबंदी स्वयं करके ते सूरमे दी किसे महापुरुष की उपमा करनी इस तरह के पुरुषों नूं कहा जांदा सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनाते सन, ये तरज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार दे उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुनी। एक असराज नाम का राजा होया जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ से उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे आया भी उदी सूर बीरता दा सिक्का चारों पासे जमे आया सी। उदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपनी सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी और चारों पासे उसका दबदबा सी। सियाणे ढाडी लोगां ने आप दी उपमा देच असराज दी उपमा देच जो गीत गाए ते जिस तरस देच गाए जिस धुन देच गाए उस धुन दा नाम पै गया टुंडे असराजे की धुन। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच वारां दे उपर इस तरीके दियां नौ धुनां चढ़ियां होईयां ने, जिहदे च इक ए धुन है, फिर चंद्रहाड़ा सोईयां की धुनी गावणी, लल्ला बहलीमा की धुनी गावणी, ए त्यादक ए धुनां ने। एक तर्ज ऐसी तर्ज जो किसी संगीतकार दे नाल ही जुड़ के रह गई और उस दे नाल जुड़ के रह गई जिसकी उपमा विच ओह गीत तर्ज उचारण की गई। यह धुनां गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इतनियां प्यारियां लगियां, इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिथे कविता साहित दे अदुत्ती खजाने ने, ज्ञान दे महासागर ने, उत्थे संगीत दे भी महान अथाह नमकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं लईए जिंदगी दे हर मसले दा हल ते जिंदगी दे हर मसले दी पूर्णता गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान दे पक्ष नूं लईए, विज्ञान दे पक्ष नूं लईए, समाज दे पक्ष नूं लईए, राजनीति दे पक्ष नूं लईए, संगीत साहित्य ते कला दे पक्ष तों लईए, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हर पक्ष विच संपूर्ण ने, मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दीआं अगम्मी बाणियां जपजी साहिब, सिद्ध गोष्ट, तुखारी बारामा, इस तरह दीआं महान बाणियां दे चों ही आप दी इक महान बाणी है आसा दीवार। इस दे च दर्शन, सफा, अध्यात्मकता और भाव, इन्हां सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर भी पहले मंगलाचरण है, लिहाजा उस दे अखरी अर्थ। एक ओंकार वो एक है जिस तो उत्पत्ति, पालना ते नास हो रहा है, वो सत स्वरूप है, उहदा नाम सत है, वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत विच पूरा होया है, व्यापक है, वो भय तो रहत है, वह तो रहत है, काल तो रहत है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं है, मूर्तिमान है, वो जन्म विच नहीं है और सुते सित अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है, वो गुरु है ते प्रसाद, वो दया दी मूर्ति है, वो रहमत दा खजाना है। आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे, ए वार महले पहले दी है, ए सारी दी सारी वार जिस दे जितनियां पौड़ियां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां उच्चारण कीतियां ने, लेकिन ए शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने सलोक भी महले पहले के, सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज दी उच्चारण कीती हुई नहीं, सलोक भी गुरु नानक देव जी महाराज उच्चारण किए हुए ने, वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही ने, सलोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद दे जोड़े ने, जेड़े जेड़े सलोक वारां दे पौड़ियां नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके, ऐसे सलोकां नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अखीर दे दर्ज करके उन्हां दा सिरलेख लिखिया, सलोक वारां तो वधीक, उह सलोक जो वारां दे च नहीं समा सके, वारां दे नाल नहीं जुड़ जा सके। तो आसा राग दे अंदर ए वार उचारण कीती हुई है ते दित्ते हुए सिरलेख दे मुताबक सलोक भी पहले पातशाह जी दे ने, सलोक महला पहला प्रथम सलोक। बलहारी गुर आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक देच गुरु दी उपमा, गुरु दी महिमा। दरअसल मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु देवते नूं जन्म दिंदा है। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप भौतिक शरीर नूं जन्म देंदे ने, गुरु अध्यात्म बद नूं जन्म देंदा है, रूहानी शरीर नूं जन्म देंदा है। लिहाजा गुरु दी महिमा सतगुरु देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, बलहारी गुर आपने मैं अपने गुरु तो बलहारने जाना सदके जाना देवहाड़ी सदवर एक दिन देच मैं सैकड़े सैकड़े दफा कुर्बान जाना सदके जाना बलहार जाना क्यों इतनी गल स्पष्ट है कि जिस तो कुछ प्राप्त होवे वही प्यारा लगता है ते उस तो कुर्बान होने नु जी करता है ते जिड़ा कुछ खो लवे जिड़ा कुछ इना चपटी करे उस तो सदके होने नु जी नहीं करा बल्कि उन्हु स्वयं ही खत्म करने नु जी करता है जगत देच सड़ा वैर उस दे नाल होंदा है जिड़ा सड़े कोल कुछ खोवे जगत दे सड़ा प्यार उस दे नाल होंदा है जिड़ा कुछ देवे हकीकत है गुरु परमात्मा छीना झपटे नहीं जानते देना ही जानते वड्डा दाता तिल ना तमाए वो इतना वड्डा दाता है पहाड़ा जिती दौलत सुख शांति दे के भी राई जितना भी तिनके जितना भी तमा नहीं रखता भाव मंग नहीं रखता तो साहब कहते ने मैं सदके जा एक दिन देच सैकड़े सैकड़े वारी उस गुरु जिसने जिन मानुष ते देवते के करत न लागी वार जिसने मनुख नु देवता बना दिता लेकिन मनुख नु देवता बना लगे रंचक मात्र भी देरी नहीं लाई एक पत्थर नु ही मूर्ति दी शक्ल देनी होवे ते कुछ महीने लग देन कई दफा कुछ साल लग देने दरअसल गुरु मनुख नु घड़दा है गुरु दे घड़न दा ढंग बड़ा अदुती है अपने मनोहर बोल ते अमृतमई दृष्ट इदे नाल जद ओ किसे व्यक्ति नू घड़ना चाहता है तो सब इत्थे कहिंदे फिर देर नहीं लगती मनुख नू देवता बनदिया देर नहीं लगती इस नू साहिब इंज वी नानक नदरी नदर दे निहाल आम जगत ते नहीं जानदा है कि जबान नाल कुछ बोल बोले जांदे ने पर नहीं अध्यात्मक दुनिया च ऐसा भी आख जांदा है कि अखां भी बोल दिया ने और अखां दी भाषा कुछ होर है अखां नफरत भी प्रगट कर दिया ने अखां प्यार भी प्रगट कर दिया ने अखां प्रेम भी प्रगट कर दिया ने अखां अपने विचों अमृत दियां लहरां भी छड़ दिया ने अखां विचों जहर भी उबल उबल के पैंदी है और जैसे जैसे मनुख दा मानसिक मंडल अति सूक्ष्म होंदा है मनुख नू अखां दी भाषा पढ़न दी जाच आ जांदी है और ए अपने आप विच एक विशेष कला है गुरु जद किसे नू घड़दा है उनका दृष्ट राही घड़दा है वचन राही विचार करते है और दृष्ट राही आता वचन राही मन बल दिता है और दृष्ट दे राही देवता बना दिता चानना प्रकाश दे दिता नूर दे दिता तो सारे मानस ते देवते किए करत न लागी वार रंग मात्र भी देर नहीं लगी उस गुरु नू मनुखा तो देवते बना महला दूजा अगला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया है जिस दे आप फरमान करते ने जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार पृथ्वी देते दो ही महान दीपक ने जो चानना वंडदे ने सूरज चंद्रमा भौतिक पदार्थ सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदे ने संसार सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदा है पर निरंकार ते गुरु दी रोशनी नाल ही दिखाई देगा गुरु दे चानने नाल ही दिखाएगा इंज कह लईए गुरु एक ज्योति है गुरु एक जोत है गुरु एक फिलसफा है गुरु एक नूर है गुरु तन नहीं गुरु एक महान रोशनी है महान विचार है महान नूर है सूरज दा चानना बार पदार्थ दा ज्ञान दे देंदा है ओदी असलियत साडे सामने रख देंदा है अंधकार दे ते कुछ भी नहीं पता चलता किड़ी चीज किथे पई है और किड़ी चीज की है इस सब कुछ दा बोध सूरज दी रोशनी दे पता चलता है पर मैं कौन हां मैं की हां इते गुरु ज्योति गुरु दे चने तो ही पता चलता है गुरु दी रोशनी तो ही पता चलता है पृथ्वी ते ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹਲਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੰਢ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਸ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਣ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਚਾਹੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਧ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਠੇ ਨਾ ਮਨਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਚੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਟ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਐਸਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਬੁਆੜ, ਤਿਲ ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਡੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਲ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁੰਨਾਪਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਨਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੁੰਨਾਪਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। अक्सर देखा है मनुख साथ लभदा है, मित्र दा साथ, पुत्र दा साथ, बाजार दा साथ, संसार दा साथ, आखिर कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ दे नाल बैठ के रह के भी मन दा सुन्नावन दूर नहीं आउंदा। इते उदों ही दूर होवेगा जद ए निरंकार दे नाल बैठेगा, जद ए करतार दे नाल बैठेगा। ते करतार दे नाल बैठना की है? करतार दी याद विच बैठना, उदे सिमरन विच बैठना। तो साहिब कहिंदे नानक गुरु न चेतै, गुरु दा ते चिंतन करदा ही नहीं, गुरु दा ते सिमरन करदा नहीं। और ना करन दा कारण की? मन अपने सुचेत। जैसे जैसे मनुख दी ए सोचनी वधदी है कि मैं सब कुछ जानदा, वैसे वैसे सब कुछ जानन तो ए रह जांदा है, हकीकत है। जैसे जैसे इसका अहंकार वधदा है कि मैनू बहुत कुछ पता है, दरअसल बहुत कुछ तो इसका संबंध टूट जांदा है। जैसे जैसे इदे संसारी अकल ते संसारी पढ़ाई इसनू मजबूर कर दी है कि मेरे कोल बहुता ज्ञान है, मेरे कोल बहुता ज्ञान है। दरअसल बहुते ज्ञान दी होंद ते बहुते ज्ञान मान बहुते अज्ञान नू कठा कर देंदा है, बहुती नासमझी नू कठा कर देंदा है। तो साहिब कहिंदे ने मन दे समझी बैठा है कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, ते गुरु दा चिंतन नहीं करदा। ऐसा मनुख इस ढंग नाल जिंदगी बतीत करदा है जिवें किसी सुन्ने खेत दे च ओ तिल जमे आवे जिहदे अंदर फल कोई नहीं, कालक ही कालक है, बुआल है। खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सवना, इस तरह ये तिल खेत दे छुट्टड़ है, कोई मालक नहीं है। कहो नानक सौ ना, ओदा सौ नहीं है कोई, उसका कोई मालक नहीं है। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआओ, सहगन फलदा ते वह भी है, ऐसा नहीं कि वह तिल फलदा नहीं, फलदा है। उन्हों फुल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी होंद नूं प्रगट भी करदा है। पर साहिब कहिंदे भी तन विच सुआ, डोडी नूं तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए, ते अंदर राख हुंदी है, सुआ हुंदी है। गुरु तो वेमुख होया मनुख भी फलीभूत ते हुंदा है, धन करके भी फलीभूत हुंदा है, और औलाद करके भी फलीभूत हुंदा है, साजो समान करके भी फलीभूत हुंदा है, पद प्रतिष्ठा करके भी फलीभूत हुंदा है। और उसका फलीभूत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा है, बे ते बहुत फलीभूत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फलीभूत होंदे ने, बल्कि जालम भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मक ज्ञानी ही फलीभूत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फलीभूत होंदे ने। और यह जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फलीभूत होंदे ने, राक्षस भी फलीभूत होंदे ने, दैंत भी फलीभूत होंदे। असमी नहीं है कि शरीफ मनुख ही फलीभूत होंदे, बल्कि शैतान भी फलीभूत होंदे ने। पर शैतान दा फलीभूत होना, राक्षस दा फलीभूत होना, नास्तिक दा फलीभूत होना, इंज है साहिब कहिंदे जैसे किसी छुट्टे तिल वह छुट्टे खेत दे च बिना मालक दे खेत दे च कोई बूटा उगे है, तिल दा मालक कोई नहीं है, निखसम है। हकीकत है कि मालक ना हो ते चिंतावां बहुत सहेल ने। पाहीर सिंह ने तदी ते कह दिता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हां। क्यों? एक ते बिल्ली दा डर गया, दूजा रिजक दी चिंता, रोजी दी चिंता ए भी गई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कितना ही चंगा होवे कि मैं तेरे हदे पिंजरे विच कैद होवां, निश्चिंत हो जावां। दरस परमात्मा दी कैद भी एक महान सुतंत्रता है, ते संसार दी महान सुतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत ये गल वखरी है कि सुतंत्रता दी प्यास मनुख दे प्राणा विच है, पर जगत दे सुतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनदे हां, की करा मैं मजबूर हां, की करा मैं मजबूर हां। ते मजबूर हां ऐसा कहना इस गल दा सबूत है कि तू कैद विच है, तू गिरफ्त विच है, तू पकड़ विच है, तू सुतंत्र नहीं। और ये मजबूरी जिंदगी दी हर थां ते प्रगट आउंदी है। ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੋਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਇਆ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਫਲ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਦਾਨੀ ਬੰਦੇ, ਗਵਾਨ ਬੰਦੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਗਤ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੀ ਭੂਤ ਓਲਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਵ। ਉਹ ਫਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਤਿਲ, ਵਾੜ ਤਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਸੜਿਆ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜੋਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਪਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲੀ ਭੂਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਛਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸੰਘਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।